हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमवीर सिंह फ्रॉम क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको मेष लगन कुंडली में ग्रहों के फलों के बारे में बताऊंगा कि आखिर मेष लगन की कुंडली को स्टडी कैसे किया जाता है। यदि आप में से किसी की मेष लगन की कुंडली है तो ये ऑडियो फाइल्स आपके बहुत काम आने वाली है। तो मेष लगन की कुंडली में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लग्न को कैसे पहचानते हैं कि ये मेष लग्न है कि वृषभ लग्न है। यदि आपके कुंडली के प्रथम हाउस में यानी पहले घर में अगर एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर होती है हमारी मेष राशि, अगर मेष राशि लिखी हुई है एक नंबर की राशि, तो आपकी मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी। तो सभी लोग वो लोग इस ऑडियो को सुने जिनकी मेष लग्न की कुंडली है, तो ये उनके काम आने वाली है। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता को दो घर मिलते हैं, एक तो वो खुद लग्नेश हैं और उनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि कुंडली के एर्थ हाउस में लिखी हुई है, तो वो अष्टम घर के भी मालिक हैं और पहले घर के मालिक हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है अति योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, एक अच्छे घर के और केंद्र के मालिक हैं, तो वो हमारे योग कारक ग्रह बनते हैं। और इस कुंडली में शुक्रदेव दूसरे और सातवें घर के मालिक हैं, क्योंकि दो नंबर की राशि वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की होती है, सात नंबर की राशि जो कि शुक्रदेव की होती है तुला राशि, तो दोनों ही राशियां ये शुक्रदेव की हैं। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग आठवें से आठवां, उससे द्वादश मतलब दूसरा घर अगर लग्नेश का एंटी पार्टी है मतलब विरोधी दल का है या फिर शत्रु है, तो उस कुंडली में दूसरे घर का मालिक मारक ग्रह बनता है। तो इस कुंडली में शुक्रदेव एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। कहीं भी कुंडली में जाके बैठ जाएं शुक्रदेव, वो अपनी दशा अंतरा में आपको प्रॉब्लम ही देते मिलेंगे। अब आते हैं बुध देव के ऊपर। बुध देव को इस कुंडली में दो घर मिले हुए हैं, एक तीसरा घर और एक छठा घर, क्योंकि तीन और छह नंबर की दोनों राशियां हमारी बुध देव की होती हैं। तो बुध देव भी इस कुंडली में मारक बनते हैं, क्योंकि वो छठे घर का स्वामी है। छठा घर हमारा रोग का होता है और रोग भाव का स्वामी कभी भी अच्छा नहीं होता है। जीवन में किसी को रोग नहीं चाहिए, इसलिए ये दोनों घर ही हमेशा खराब माने जाते हैं, थर्ड हाउस और छठा घर। थर्ड हाउस होता है हमारी मेहनत का, फिजूल मेहनत का, हार्डवर्क का, परिश्रम का, और आज की डेट में किसी को मेहनत करना पसंद नहीं है, इसीलिए कुंडली का तीसरा घर भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो बुध देवता तीन और छह घर के स्वामी होने के कारण वो हमेशा इस कुंडली में एक शत्रु की भांति रिजल्ट देंगे, जो कि एक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चंद्र देवता चौथे घर के मालिक हैं, जो कि हमारे लग्नेश के मित्र भी हैं, लग्नेश मंगल के, तो यहाँ पर चंद्र देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अगर चंद्र देवता कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हुए तब। तो चंद्रदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं। सूर्यदेव पंचम घर के मालिक हैं मतलब त्रिकोण के मालिक हैं, तो सूर्य देवता भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं। बृहस्पति देवता की दो राशियां होती हैं, जिसकी एक धनु राशि मूल त्रिकोण राशि मूल त्रिकोण में आने की वजह से ये कुंडली का बहुत अच्छा योग कारक ग्रह बन जाता है। तो धनु राशि हमारी नाइन्थ हाउस में आने से जो है बृहस्पति भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बनते हैं। और शनि देव को दो घर बने हुए हैं, 10th हाउस और 11th हाउस। तो शनि देव को दो अच्छे घर तो मिल गए कुंडली में, लेकिन वो लग्नेश के एंटी पार्टी हैं, तो इस कुंडली में शनि देव एक सांझे बिल्ले का रोल प्ले करेंगे, मतलब एक एवरेज प्लेनेट, एक सम ग्रह की उपाधि लेके बैठे हुए हैं। तो शनिदेव अगर अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे घरों में बैठे हुए हैं तो बुरा घर रिजल्ट देंगे। तो इस कुंडली में शनि देव का रत्न भी पहना जा सकता है। यदि शनि देव दूसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें दस ग्यारह भाव में अगर बैठे हुए हैं तो उनका रत्न पहना जा सकता है, लेकिन ये मेष लग्न की कुंडली है और शनिदेव सम ग्रह की उपाधि लेके बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली में नीलम के साथ में ना तो मूंगा पहना जाएगा, ना मोती पहना जाएगा, ना बृहस्पति का पुखराज पहना जाएगा, और ना ही माणिक के साथ में पहना जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, और बाकी की चीजें मैंने नीचे एक्सप्लेन की हुई हैं, वो आप स्टडी कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।